आरव और आयु दोनों देहरादून के होटल के आमने सामने के सुइट में रह रहे थे। इस बात से दोनों अनजान थे। आरव आरिशा से मिल चुका था, जबकि आर्या अभी भी आयु की नज़रों से अनजान था। अगली सुबह आयु की आंख जल्दी खुल गई थी। उसने आरिशा की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सोई हुई थी। आयु ने उसके फोरहेड पर किस किया और फिर उसे गुड मॉर्निंग विश करके स्वीट से बाहर आ गई। आयु स्वीट से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। एक्सक्यूज़ मी मिसेस खुराना। वो आर्या की आवाज़ थी, जिसने आयु को आरिशा की स्वीट से बाहर निकलते देखा था। एक बच्चे की आवाज़ सुनकर आयु के कदम वहीं रुक गए। आरव के बाद उसने काफ़ी टाइम बाद किसी के मुंह से मिसेस खुराना शब्द सुना था। आयु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और पीछे की तरफ पलटी तो सामने आर्या खड़ा था। आयु को देखकर एक पल के लिए आर्या के शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो गौर से उसकी तरफ देख रहा था। आयु उसके पास आई और फिर सिर हिलाकर कहा, क्या मैं आपको जानती हूँ? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, और तुमने मुझे मिसेस खुराना कहकर क्यों बुलाया? आप आरिशा खुराना की मॉम हो तो हुई ना मिसेस खुराना, आर्या ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। फिर उसने आयु के चेहरे की तरफ देखकर कहा, यू आर ब्यूटिफुल, लेकिन आपको आरिशा को कुछ मैनर्स सिखाने चाहिए। अपने बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए और उनसे बेवजह की जिद भी नहीं करनी चाहिए। फिर भी वो कल मेरे डैड के साथ झगड़ा कर रही थी, उन्हें भला बुरा बोल रही थी। तुम्हारे डैड से आरू झगड़ा कर रही थी? और कौन है तुम्हारे डैड? आयु ने हैरानी से पूछा। अब तक उसे कुछ पता नहीं था। आर्या ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, येस ऑफ कोर्स, वो मेरे डैड के साथ झगड़ा कर रही थी। आपकी बातों से लग रहा है कि आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है। आरिशा ने डैड की गाड़ी खराब कर दी। आर्या की बातें सुनकर आयु समझ गई थी कि वो उस शख्स के बारे में बात कर रहा है जिसने कल अपनी गाड़ी से आरिशा के ऊपर कीचड़ उछाला था। जैसे ही आयु को सब समझ आया, उसने अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर कहा, अच्छा तो तुम उस बदतमीज इंसान के बेटे हो। जाकर अपने डैड को समझाओ कि छोटे बच्चों के साथ उलझा ना करें। क्या हो जाता जो वो सॉरी बोल देते? कहीं उन्होंने तो तुम्हें समझाने के लिए यहाँ नहीं भेजा है? आयु को गुस्सा होते देख आर्या ने जल्दी से नामे सिर हिलाया और बोला, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? आरिशा बिल्कुल ठीक कहती है, आपका गुस्सा खतरनाक है। आर्या की बातें सुनकर आयु को समझ आया कि वो बेवजह उस पर गुस्सा दिखा रही है, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। वो तो एक छोटा बच्चा था जो आरिशा की उम्र का ही होगा। आयु को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वो आर्या के सामने बैठी और उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओके, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मेरी आरू ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे डैड की गलती थी। मैं समझ गया मिसेस खुराना, आर्या ने जवाब दिया। उसके मुंह से बार बार मिसेस खुराना शब्द सुनकर आयु को इरिटेशन होने लगी। फिर भी वो आर्या के सामने अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रही थी। आयु ने शांत लहजे में कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे मिसेस खुराना कहना बंद करो। मैं कोई मिसेस खुराना नहीं हूँ, तो मुझे आंटी बुला सकते हो। लेकिन आप दिखने में आंटी जैसी लग नहीं रही, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, तो मिसेस खुराना ही ठीक है, आर्या ने जवाब दिया और फिर अपने स्वीट में जाने लगा। उसकी बातें सुनकर आयु को हैरानी हो रही थी। वो सिर हिलाकर बोली, ये आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो रहे हैं। आयु अब बाहर जाने के बाद वापस अपने स्वीट में आ गई। उसने ज्ञान जी को कॉल करके आज का शेड्यूल बताया और फिर बाथरूम में चली गई। बाहर आने के बाद में उसने आरिशा को भी तैयार कर दिया था। आज वो आरिशा के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले थे। वहीं अपने स्वीट में आरव भी तैयार हो चुका था और उसने अपने साथ आर्या को भी रेडी कर दिया था। आर्या को तैयार करने के बाद आरव ने उससे पूछा, अच्छा बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं तुम्हें वहीं पर लेकर चलूंगा। जब तक हम यहाँ पर हैं, मैं मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और ना ही अपना कोई काम करूंगा। आर्या कुछ पल रुककर बोला, मेरी रेहान से बात हुई थी, उसने बताया कि वो कल रात ही देहरादून आ चुके हैं। मुझे नानू के फार्म हाउस जाना है डैड, और आप मुझे वहाँ लेकर जाओगे, आपने मुझे प्रॉमिस किया है। हद है, जब तुम्हें ओबरॉय फैमिली के साथ ही रहना था तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तुम जानते भी हो मेरे सब कुछ छोड़कर आने की वजह से मुझे कितना नुकसान हो रहा है, आरव ने हल्के गुस्से में कहा। मैंने आपको यहाँ आने के लिए नहीं कहा था, आप खुद ही आए हो। आप चाहो तो मुझे वहाँ छोड़कर वापस जा सकते हो, फिर आपका नुकसान नहीं होगा, आर्या कंधे उठाकर बोला। आरव जानता था आर्या बिल्कुल उसी की तरह जिद्दी है, तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। वो उससे बहस भी नहीं करना चाहता था, इसलिए आरव ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है, और मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर मैं अपने काम निपटा लूंगा और शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तब तक तुम उनके साथ रह सकते हो। आरव के हाँ कहते ही आर्या खुश हो गया और उसके गले लग गया। वो जल्दी से बोला, आई लव यू डैड, आप बहुत अच्छे हो। आई लव यू टू बेटा, आरव ने जवाब दिया। फिर वो मन ही मन बड़बड़ा कर बोला, बिल्कुल अपनी मॉम पर गया है, जब भी इनकी बात मानो तभी उनके मुंह से आई लव यू निकलता है। आरव आर्या को लेकर इस वक्त ओबरॉय के फार्म हाउस जाने के लिए निकल गया। वहीं ज्ञान जी अचानक अपनी पूरी फैमिली के वहां आने पर हैरान थे। वो सब ज्ञान जी को वहां देखकर काफी खुश हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि वो वहां पर आए हुए हैं। ज्ञान जी ने जय जी की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, आने से पहले बता नहीं सकते थे क्या? पहले पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर होना जरूरी होता है पापा जी। हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, फिर भी आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हो, जय जी ने हैरानी से कहा। वो ज्ञान जी से मिलकर बहुत खुश थे, जबकि ज्ञान जी को इस वक्त कुछ और ही डर लग रहा था। अब तो पता चल गया ना मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो अब क्यों नहीं चले जाते? और तुम्हें नहीं जाना है तो मैं चला जाता हूँ, ज्ञान जी ने काफी रूडली जवाब दिया और फिर वहां से जाने को हुए। तभी रेहान उनके सामने आ गया। रेहान उनकी तरफ देखकर मासूमियत से बोला, बड़े दादू आप बहुत क्यूट हो, प्लीज मत जाइए ना। रेहान के पास में रुद्र खड़ा था, वो उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हमारी बात ना सही लेकिन इस बच्चे की बात तो मान लीजिए ना दादू। ज्ञान जी ने कुछ भी कहने से पहले रेहान की तरफ देखा, जो पपी आई से उनकी तरफ देख रहा था। रेहान की तरफ देखते ही उनका गुस्सा पिघल गया और उन्होंने वहां रुकने की हामी भर दी थी। ज्ञान जी के रुकने पर सब खुश थे, तो वहीं सिमरन के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने सबके सामने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखें साफ बयां कर रही थी जैसे उसकी कोई बड़ी उम्मीद टूट गई हो। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी आरव आर्या को लेकर वहां पहुंचा। वो उसे बाहर ही ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन आर्या की जिद करने पर उसे अंदर आना पड़ा। ज्ञान जी आरव को नहीं जानते थे, लेकिन साथ खड़े बच्चे को देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वो किसी और का नहीं बल्कि आयु का ही बेटा है। ओबरॉय फैमिली भी देहरादून पहुंच चुकी थी और इस वक्त ज्ञान जी के फार्म हाउस में थी। ज्ञान जी वहां रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन सिमरन और रुद्र के बेटे रेहरान के कहने पर वो वहां रुकने के लिए मान गए।
वहीं आर्य की जिद करने पर आरव भी उसे लेकर ओबरॉयज के फार्म हाउस पहुंचा। आर्य की जिद करने पर मजबूरन आरव को अंदर जाना पड़ा। जैसे ही ज्ञान जी ने आर्य को देखा, उसकी आंखें और उम्र देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वो आयु का बेटा हो सकता है। आरव को देखते ही ज्ञान जी जल्दी से उसके पास गए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम आरव खुराना हो ना? आरव ने ज्ञान जी को पहली बार देखा था और वो अब तक इस बात तक से अनजान था कि आयु के दादू इस दुनिया में हैं। वो हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। तभी सिमरन ने उसे बताया, ये हमारे दादू हैं, ये अलग ही रहते हैं हमेशा से। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना था, आरव ने काफी बेपरवाही से जवाब दिया। फिर उसने सिमरन से कहा, मैं शाम को इसे वापस लेने आ जाऊंगा, प्लीज इसका ध्यान रखना। आरव वहां से जाने को हुआ, तभी ज्ञान जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और सख्ती से कहा, ये बच्चा मेरी आयु का है, ये जिंदा है और तुमने अब तक बताया क्यों नहीं? ज्ञान जी अचानक ही आरव पर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने इतने सालों में आयु को अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए देखा था। वो अब तक इस बात की गिल्ट में थी कि उसकी वजह से उसके बेटे की जान चली गई। आरव ने ज्ञान जी का हाथ झटका और सर हिलाकर कहा, एक्सक्यूज मी, ये मेरा बेटा है और ये जिंदा है, इसके लिए मुझे अनाउंसमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे पता है आप इन सबसे दूर थे, फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि ये जिंदा है या नहीं? ज्ञान जी ने कुछ नहीं कहा। अगर वो वहां कुछ कहते तो उन सबको पता चल जाता कि आयु अब तक उनके साथ रह रही थी। ज्ञान जी ने बात को टालते हुए कहा, मुझे अब तक यही पता था कि दोनों बच्चों की जान चली गई है, बस इसीलिए पूछा। लेकिन दादू, आपको कैसे पता दोनों बच्चों की जान चली गई या आयु के दो बच्चे थे? रुद्र ने हैरानी से पूछा। ज्ञान जी की बातों से रुद्र को शक हो गया था। इससे पहले कि आरव उनसे कोई सवाल पूछता, वो जल्दी से बोले, मेरी उससे बात हुई थी, तब उसने बताया था। मेरा सिर दर्द कर रहा है, तुम लोगों के सवाल जवाब के लिए नहीं हूं मैं यहाँ पर। ज्ञान जी ने उन सबसे पल्ला झाड़ा और ऊपर अपने कमरे में चले गए। आरव उनसे काफी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन ज्ञान जी जल्दबाजी में चले गए। उनके जाने के बाद आरव ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, ये जानते थे कि दोनों बच्चों की जान चली गई है? इसका मतलब आयु ने उनसे तब बात की होगी जब वो हादसा हुआ होगा या उसके बाद। मुझे उनसे बात करनी है। आरव जल्दी से ज्ञान जी के पीछे जाने लगा, लेकिन उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। हर कोई जानता था कि ज्ञान जी थोड़े सख्त मिजाज के हैं, इसलिए उन्होंने दरवाजा नॉक तक नहीं किया। वहीं ज्ञान जी अब इस खबर को आयु को बताने के लिए बेताब हो रहे थे कि उसकी बेटी के साथ साथ उसका बेटा भी इसी दुनिया में है।